प्रवचन निर्देश का की ओर संक्षेप में प्रवचन निर्देश का जिसका स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। सम्यक्त की उत्पत्ति के कारण तो आपने सुने हैं, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण माना गया है। जिन बिंब दर्शन, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, अंतरंग कारण तो कर्म का उपशम क्षयोपशम आदि है ही है, बहिरंग निमित्त बहुत बड़ा साधन कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा साधन है। ऐसे जिन बिंब के दर्शन से और दिगंबर जैन मुनियों के दर्शन आदि से तिरंतों ने भी, पंचेंद्रिय तिरंतों ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके, अनुव्रत प्राप्त करके, आगे चल करके तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त किया है। जहां ये साधन नहीं, कारण नहीं, वहां भी आचार्य ने बताया है देशनालब्धि में पूर्व जन्म के संस्कार देशनालब्धि में काम आते हैं। जहां तीन नरक के बाद चौथे पांचवें आदि नरकों में समेत के लिए कारण में बताया है देशनालब्धि में कि पूर्व जन्म में गुरुओं का प्रवचन सुना, कदाचित तो स्मरण में आ जाता है और देशनालब्धि का काम करता है, गुरुओं का उपदेश व्यर्थ नहीं जाता है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे कि आज हम आपको उपदेश सुना रहे हैं, आज आपको उपदेश काम में आए ना आए, लेकिन हमारी देशना, हमारा उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी न किसी जन्म में आपके काम आ जाएगा और आपके लिए संस्कार बन जाएगा, देशनालब्धि में कारण बन जाएगा। तो बात यही है, तो सम्यक के तीन भेद है। अब आज मैं आपको ले चलूं सम्यक दर्शन के तीन भेद, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, जो अनादि मिथ्या दृष्टि भविजीव के सैनी पंचेंद्री हो उनके सम्यक प्रकट होता है, वो औपशमिक सम्यक कहलाता है। प्रथमोपशम पुनश्च उसका काल मात्र अंतर मुहूर्त है, और क्षायोपशमिक सम्यक तो है जो औपशमिक सम्यक दर्शन के प्रकट होने के बाद दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, तीन हिस्से हो जाते हैं। मोहिनी, दर्शन मोहिनी, सम्यक सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति और मिथ्यात् प्रकृति, तीन टुकड़े हो जाते हैं। इन तीनों के उपशम से और अनंतानुबंधी कषाय की चार के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो औपशमिक है, और इसमें जो सम्यक प्रकृति का जिसमें उदय रहता है, जो दर्शन मोहिनी का एक भेद रूप सम्यक प्रकृति है उसका जिसमें उदय हो, और मिथ्यात् प्रकृति और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति और अनंतानुबंधी की चार, इन छह प्रकृतियों का जिसमें क्षयोपशम हो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। आज वही सम्यक दर्शन, इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी है। आज हमें और आपको जिसको भी सम्यक दर्शन है ये यही वेदक सम्यक दर्शन है, ध्यान रखें, क्योंकि अंतर्मुहूर्त उपशम सम्यक का काल ही अंतर्मुहूर्त, और क्षायिक सम्यक के लक्षण की व्याख्या है जो इन सातों प्रकृतियों के दर्शन मोहिनी की तीन अनंतानुबंधी की चार, सातों प्रकृतियों के क्षय से, विनाश से, सरसा अभाव से प्रकट होता है वो क्षायिक सम्यक दर्शन। वो केवली अथवा केवली के पाद मूल में ही होगा। तो आज पंतम काल में ये क्षायिक सम्यक दर्शन है ही नहीं, किसी को हो ही नहीं सकता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के पंचम काल में जन्म भी नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है। हमें और आपको जिनको भी सम्यक दर्शन है सब क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, और सम्यक प्रकृति के उदय का इसमें बताया है कि चलमलिन अगाढ़ कदाचित दोष लग जाया करते हैं। चलमलिन अगाढ़ तम वेदक सम्यक का लक्षण क्या है, सम्यक प्रकृति के उदय से जिसमें चलमलिन अगाढ़ अधिक दोष लग जाए वो वेदक सम्यक दर्शन है। तो भव्यात्माओं आज हमें और आपको यही है, और श्री गौतम स्वामी की वाणी में हम और आप देखेंगे जो उन्होंने कहा है, निसंख्य निकंखीय निविगंठा अमीर्ण दिठीय उ गुहण श्रीकरणम वत्सल पहावना चे दी, वत्सल पहावना चे अठ, निसंकित निकांक्षित निर्चिकित्सा अमूर्त दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल और प्रभावना, इन आठ अंगों से सही सम्यक दर्शन आचार्य ने माना है। इन आठ अंग की व्याख्या रत्न ग्रंथ शौकाचार्य में पुरुषार्थ के उपाय आदि ग्रंथों में विस्तार रूप से की गई है। धीरेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना निसंकित अंग है। वर्तमान में भोगों की आकांक्षा नहीं करना, निदान आदि नहीं करना निकांक्षित अंग है। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके, क्योंकि स्नान नहीं करते, स्नान नाम का व्रत है, ग्लानि आदि नहीं करना, निर्चिकित्सा अंग, उनके रत्नत्र गुणों में प्रीति करना निर्चिकित्सा अंग है। अमूर्त दृष्टि मूर्छा को नहीं प्राप्त होना, अनेक प्रकार के कुछ भी ऐसे प्रभाव कार्य देख करके मूर्छा को नहीं प्राप्त होना, स्थितिकरण उपगुहन, किसी भी धर्मात्मा के द्वारा कोई दोष हो जाने पर उसे माता के समान छिपा करके उसकी रक्षा करना और उसे स्थितिकरण धर्म में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना आदि, सम्यक दर्शन से सम्यक चारित से डिगते हुए कोई उस पर स्थिर कर देना स्थितिकरण, और वात्सल्य, वात्सल्य गाय जैसे अपने बछड़े में प्रेम करती है, ऐसे धर्मी जनों से सधर्मी जनों से प्रेम करना प्रीति करना वात्सल्य अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। सयुथान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कई तवा प्रतिपत्ति जैसा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते, वात्सल्य का महिमा आज हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अनादि परंपरा है, जो धर्म के उन्नति करने वाले को देख करके दाते ईर्ष्या भी करने लगते हैं, विद्वेष भी करते हैं और उनकी झूठी साची निंदा भी करने लगते हैं। धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा में इतना प्रेम होना, इतना वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़े, ये वात्सल्य अंग आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते कि धर्मात्माओं के प्रति अगर माथा सिकुड़ गया आपका, उनमें जरा अप्रीति हुई, तो समझ लो कि जो है तुमने वात्सल्य अंग का पालन नहीं किया। हमेशा वो वात्सल्य अंग पालन करने की शिक्षा देते थे, यही कारण था कि उस समय आज से 50 वर्ष पूर्व भव्यात्माओं, सन 1955-56 की बात है, 57 की बात है, हमने पाया है आचार्य श्री में इतना वात्सल्य था कि संघ के साधु कोई भी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और उस समय एक ही संघ था आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का, और कोई संघ ही नहीं थे। धीरे धीरे परंपरा आज हम देखते हैं संघों में है और वात्सल्य है। जब भी बड़े बड़े संघ विस्तृत बड़े बड़े विशाल संघ देखे जा रहे हैं, मुनियों के संघ, आरिकाओं के संघ, चतुर्विद के संघ, ये भी वात्सल्य, जब चिंतन आता है कि जिस दिन लंका में रावण की मृत्यु हुई है उस दिन सायंकाल में 56,000 आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि एकदम वहां पहुंच गए। आचार्य ने लिखा है कि अगर वो कुछ क्षण पहले आ गया होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती, रावण और लक्ष्मण में समय आपस में संधि हो जाती, लेकिन ऐसा योग नहीं होता है, जो होनहार होती उसको टाल नहीं सकते। भक्तविता तो संघ देर से पहुंचा वहां, 56,000 मुनियों का संघ, हम और आप चिंतन करें, 48,000 महिलाओं ने, रानियों ने दीक्षाएं ली है, हारिका की दीक्षा, हजारों हजारों राजपुत्रों ने और जनता ने दीक्षा ली है, मुनि बने हैं, इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि भी मुनि बने हैं, जैन रामायण के अनुसार इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि मुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया है बड़वानी से। तो भव्यात्माओं बात यही है, यह संघ की परंपरा, हम समय शिखर महात्म नाम से पुस्तक को पढ़ते हैं तो आनंद आता है कि हजारों हजारों लाखों लाखों मुनियों के चतुर्विध संघ के लेकर के बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने समय शिखर आदि की यात्राएं कराई हैं, विहार कराए हैं। तो बात यही है, आज भी संघ की परंपरा देखी जा रही है, संघ बने हैं, ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। तो बात यही है, वात्सल्य अंग और अहिंसा परमो धर्म, जैन शासन, और जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु का प्रति अकाट श्रद्धान होता है, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीवादि सात तत्वों का सिद्धांत तो करता ही करता है, तत्वार सिद्धांत और सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन के अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार से उनकी व्याख्या की है आचार्यों ने। अत्यागम तत्यानम सहदय नादो हवई सम्मतम, आप त्यागम और गुरु का सिद्धांत करना, देव सात गुरु का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। सात तत्वों के अंदर जीव तत्व में चतुर्विध संघ मुनि अरिका आदि गाए जाते हैं, और बहिरात्मा अंतरात्मा आदि के भेद को समझ करके अंतरात्मा, अपने को अंतरात्मा बनाना, बहिरात्मा अवस्था को छोड़ करके आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करते हुए और आठ अंग सहित समय दर्शन को धारण करना। आज इस पंचम काल में मैं समझती हूँ कि जिनके, हमें और आपको यदि समय दर्शन प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए हमारे लिए पंचम काल भी सर्वस्व सर्वश्रेष्ठ महान बन गया। हमारे लिए पंचम काल अभिशाप और वरदान, अभिशाप न होकर वरदान बन गया। अनंतानंद काल हो गए संसार में परिभ्रमण करते हुए, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता तो पंचम काल में जन्म नहीं लेते, और आज पंचम काल में यदि सम्यक दर्शन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सर्वस्व मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। और समझ लीजिए दो चार भाव में निश्चित हम और आप संसार का अंत करके 84 लाख योनियों के दुखों से छूट कर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में निश्चित ही सफल होंगे। जो भव्य आत्मा जैन शासन की प्रभावना में कार्य करते हैं, वात्सल्य अंग धारण करते हैं, आज हम देखते हैं चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, सर्वत्र बड़ी बड़ी जिन मूर्तियां विराजमान करके, मैं नेमिसार महाराज का रोज मंत्र बुलवाती हूँ, आचार्य श्री वीर सागर जी और नेमिसार जी महाराज ने मुनि दीक्षा के साथ ली थी, इसलिए मुनि दीक्षा सहित शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और नेमिसार महाराज ने मुंबई को तीर्थ बना दिया, मुंबई में भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके, और जो उन्होंने पोदनपुर तीर्थ बना दिया, और उसी तीर्थ के दर्शन की भावना को लेकर के मैं वहाँ दर्शन करने गई थी, और वर्षा योग का चातुर्मास का योग भी लोगों के आग्रह से हो गया, और मुंबई का चातुर्मास भी अद्भुत और भावना से संपन्न हुआ अभी 2017 का। तो भव्यात्माओं बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और वहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी, रौनाही, ये सब क्षेत्र जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म की भावना होती रहे, जैन शासन जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का नाम सारे विश्व में प्रभावना के साथ फैले, और सारे विश्व में अभी भगवान ऋषभदेव की जयंती आ रही है, चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती, आप और हम सब मिलकर के, पूरी जैन समाज के लोग मिलकर के, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हुए भगवान ऋषभदेव के नाम को सारे विश्व में पहुँचाए। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, भगवान पांच तीर्थ संग्रह की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, इसी भावना के साथ अयोध्या को और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि इस रौनाही तीर्थ को, रतनपुरी तीर्थ को नमन करते हुए और भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।